ओम शांति। एक है तन की एक्सरसाइज और दूसरी है मन की, दोनों ही करना है। एक शरीर का स्वास्थ्य और दूसरा मन का स्वास्थ्य। यदि मन रुग्ण है, यदि चित्त ही रुग्ण है, तो जीवन का आनंद अनुभव नहीं हो सकता। तो हम बात कर रहे थे मन को शक्तिशाली बनाने की। कितनी पॉइंट्स हो गई? सबसे पहला था स्वमान, दूसरा था सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग, तीसरा था क्या था? रूहानी ड्रिल, चौथा था विजुअलाइजेशन, पांचवा था ग्रेटिट्यूड, छठवा है ज्ञान का चिंतन, जो कि हमने सुबह विस्तार से जिस पर चर्चा की। सातवा है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। जब तक क्रिएटिविटी ना हो जीवन में, कुछ नवीनता, तब तक जीवन नीरस हो जाता है। हर चीज में क्रिएटिविटी, हर चीज में नवीनता, हर चीज में नया दृष्टिकोण देखने का, हर परिस्थिति को देखने का, हर चीज को करने का, हर चीज को अनुभव करने का। जीवन में रचनात्मकता लानी है, क्रिएटिविटी। इसको बंद कर दीजिए। कैसे लाएंगे ये रचनात्मकता? कैसे लाएंगे रचनात्मकता? सबसे पहले तो है किसमें लाएंगे रचनात्मकता। सबसे अगर हमारे चार सब्जेक्ट है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही चीजों में नवीनता लानी है। इस विश्वविद्यालय के चार सब्जेक्ट है, ज्ञान में नवीनता, योग में नवीनता, धारणाओं को धारण करने में नवीनता, और चौथा सेवाओं में नवीनता। ज्ञान में नवीनता, अगर एक ही तरह से ज्ञान सुना जाए सुना जाए सुना जाए एक ही तरह से, तो बोर हो जाता है। सुबह इसकी हमने और विस्तार से चर्चा की कि मुरली को अलग अलग ढंग से उसके ऊपर चिंतन करना है। एक विधि है कि मुरली से बहुत सारे 10 प्रश्न निकाल ले, पढ़ते पढ़ते ही प्रश्न लिख ले और फिर एक दूसरे से पूछे, या खुद ही उन प्रश्नों को पढ़े और सोचे कि बाबा ने इसके बारे में कितने उत्तर हो सकते हैं। मुरली में तो एक उत्तर लिखा होगा, पर कितने उत्तर और निकाले जा सकते हैं। तो हर साकार मुरली से, डेली के मुरली से हम बहुत सारे प्रश्न निकाल ले, ये एक नवीनता हो सकती है। दूसरा, टॉपिक्स निकाल ले, कुछ टॉपिक्स निकाल ले। जैसे आज की मुरली से एक टॉपिक निकल सकता है, यह संसार भूल भुलैया कैसे है। एक जगह दिव्य दृष्टि की बात आई है, दिव्य दृष्टि का क्या महत्व है, टॉपिक्स निकाल लेना। कल परसों मुरली थी दधीची ऋषि मिसल, क्या करना है तुम्हें? अपनी हड्डियां सेवा में लगानी है। कैसे लगाए, क्यों लगाए, कहां लगाए, कब लगाए, कैसे लगाए, ये सारे प्रश्न मन में आ जाए तो मुरली से क्या करना है? टॉपिक्स निकालना है, प्रश्न निकालना। उसके बाद जो वरदान और स्लोगन होता है, उस पर विशेष काम करने की आवश्यकता है। वो वरदान और स्लोगन किसी ना किसी अव्यक्त वाणी से लिया गया होता है, उसका भाव क्या है, उस पर हम चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें, पठन करें, पाठन करें, उसका विस्तार करें मन में। जब तक हम ज्ञान का विस्तार, बाबा ने कहा है एक तो विस्तार को सार में लाओ, दूसरा यह भी कहा है जो ज्ञान सार रूप में है उसका विस्तार करो। ज्ञान जो सार रूप में है उसका क्या करो? विस्तार करो। बाबा का एक महावाक्य लेकर उसका विस्तार करना। अगर बाबा कहते हैं संतुष्ट मनी बनो, क्यों बने संतुष्ट मनी, क्या महत्व है संतुष्टता का, अगर हम संतुष्ट मणि बन जाए तो क्या हो जाएगा? चिंतन चालू करो, बुद्धि को धक्का लगना चाहिए मुरली से। इसको हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लाए? तो ज्ञान की तरफ देखने का नया दृष्टिकोण। बहुत सारे त्योहार आते हैं, उनका क्या महत्व है? यदि बहन जी आपको कहीं भेज दे और कहे कि जाओ शिवरात्रि पर समझाओ, तो क्या हम समझा सकेंगे? और नए नए लोगों को, अलग अलग श्रेणी के आने वाले लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उसको उसी की भाषा में समझाना, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए हमें स्वयं को ज्ञानी बनाना है। जब बुद्धि में, बाबा ने कहा है, ज्ञान की बुलबुल क्या करे, क्या करती रहे ज्ञान की बुलबुल? टिकलू टिकलू करती रहे, ज्ञान की सरिता बुद्धि में बहती रहे, निरंतर उसका चिंतन चलता रहे। टॉपिक्स निकाल लो, पॉइंट्स ले लो, पॉइंट्स बुद्धि में धारण करो। कई लोग कहते हैं हमको पॉइंट्स बिल्कुल याद नहीं रहते, मुरली पढ़ लेते एक बार दो बार, लिखते भी है, पर यदि पूछो क्या था, कुछ भी याद नहीं। उस इस बीमारी का क्या किया जाए? किसकी शादी में कितनी, कौन सी साड़ी कितने रुपए की थी और कहां से ली थी, वो सब याद है। तो बुद्धि का इशू नहीं है, ये मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। वो चम्मच किसकी दुकान से कितने का था, वो सब अभी भी याद है। किसने 10 साल पहले क्या कहा था, वो अभी याद है, पर ये पॉइंट याद नहीं है। हम कहते हैं हम बूढ़े हो रहे, बुद्धि काम नहीं कर रही है, परंतु ये सब बातों में काम करती है। तो बात यहां इंटरेस्ट की है, कितना इंटरेस्ट है हमको उसमें। एक छोटा सा लड़का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है उसको, मैथ्स बिल्कुल याद नहीं रहता, परंतु उसको वो याद है कि फुटबॉल मैच में किसने कितने गोल किए थे, क्रिकेट में किसने कितने रन 1 साल पहले बनाए थे। क्यों? इंटरेस्ट, जिसकी जहां रुचि है। इसके लिए अभी अभी जो मुरली चली थी ना, उसमें बाबा ने कहा ना, इंटरेस्ट रुचि, मन का मौन, मन शांत, इसमें रुचि बढ़ाओ, इंटरेस्ट बढ़ाओ, शौक हो, ये शब्द प्रयोग कर रहे बाबा, हॉबी, इन आध्यात्मिक चीजों के लिए। जैसे उसमें इंटरेस्ट है, वैसे इसमें भी इंटरेस्ट हो। ये बात मेमोरी की नहीं है, मेमोरी निर्दोष है बिचारी। बात है इंटरेस्ट की, किसको कितना इंटरेस्ट है। तो रचनात्मकता लानी है ज्ञान को देखने में, सुनने में भी। अभी यहां बैठ के आप लोग सुन रहे हैं, सुनने में रचनात्मकता, सुनने में नवीनता, जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, किस भाव से कह रहा है, किस स्थिति में स्थित होके कह रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन से वेवलेंथ है, उसी में स्वयं को ढाल लेना और वो सुनते सुनते ही धारण कर लेना। जैसे यहां पर मुरली चलती है, सुनते सुनते ही उसी तल पर चले जाना जिस तल पर ये सुनाई जा रही है, या कोई ज्ञान की बातें कही जा रही है। ऑल ईयर्स इंग्लिश में शब्द है, आई एम ऑल ईयर्स मतलब पूर्ण ध्यान से मैं सुन रहा हूं। एक है लिसनिंग, एक है हियरिंग। हियर नहीं करना है, लिसन करना है, ध्यान लगाकर सुनना। ये भी एक एकाग्रता का अभ्यास है, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ज्ञान में, फिर योग में, एक एक ही योग नहीं करते रहना है, नया नया प्रयोग करना। जैसे कहा, इस किताब में बहुत सारी चीजें लिखी है, योग के बहुत सारे 108 प्रयोग है इसमें। फिर है धारणा में, जो दिव्य गुण है उनको हम किस अलग अलग रीति से धारण करें। विदेशियों की कई सारी रिट्रीट होती है, वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं दिव्य गुणों के, अलग 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 अलग। उसमें एक गेम ऐसा भी है, अगर कल समय मिला तो हम खेलेंगे, कि जिसमें आमने सामने दो व्यक्ति बैठ जाते हैं और जिसमें एक व्यक्ति को एक गुण दिया जाता है, और वो ये सोचता है कि ये गुण जैसे पवित्रता है, शिव बाबा से पूर्ण गुण मुझ में समा रहा है और अब मैं सामने जो आत्मा बैठी है उसको ये गुण ट्रांसफर कर रहा हूं। ये खेल है, ये गेम है ज्ञान के, जैसे हमने सुबह खेला था,
जैसे ये
अगर हम कहें कि ये क्या है गुड़िया, इसका ज्ञान में क्या संबंध है, क्या कहेंगे? भक्ति में गुड़ियों की पूजा करते थे, देखो ज्ञान की पॉइंट जोड़ दी ना, भक्ति में क्या करते थे? गुड़ियों की पूजा। और डुबो देते थे। और दूसरी पॉइंट, गुड़िया से संबंधित ज्ञान और गुड़िया कैसे जोड़ोगे दोनों को? नाजुकपना नहीं दुखाना है, बहुत अच्छी बात। सेंसिटिव नेचर ना हो, फीलिंग देवी नहीं बन जाना है। यहां कौन कौन है जो फीलिंग देवी है? किसी ने कुछ कह दिया और बस मूड ऑफ। हमने बहुत सेवा की पर बहन जी ने हमारा नाम नहीं लिया, मूड ऑफ, अगली बार से हम नहीं करेंगे, मूड ऑफ। मूड ऑफ करने की जो बीमारी है होने की, बाबा कहते दुख ना दो, पर उससे भी खतरनाक कौन सा है? दुख ले लेना, खुद दुखी हो जाना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं, खुद को दुखी कर देना। जैसे इंतजार में थे, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट, कि मनुष्य के अंदर एक अद्भुत सा प्रेम है दुख के प्रति। 10 लोग सुख देते हैं उनको याद नहीं करता है, जैसे ही 11वां व्यक्ति एक अपशब्द या कुछ बोलता है उसकी बात को ऐसा पकड़ लेते हैं जैसे इंतजार में थे दुख का। दुख को एब्जॉर्ब, शिवानी बहन कहते हैं ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ पेन, पेन एब्जॉर्प्शन, पकड़ लेते हैं उसकी बात को। इतने सारे लोगों ने अच्छा कहा वो भूल गए, इसने ऐसा कहा और मुझे कहा, बस दिन रात चिंतन करते रहो, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। जैसे तीर ऐसा चलाते ना, वो ऐसा चलाते उल्टा, इधर स्वयं को घायल करते हैं। दुखी होना, मूड ऑफ होना, सेंसिटिव होना, ये मार्ग जो है वो इतना नाजुक बनकर नहीं चलेगा गुड़िया जैसा, शक्तिशाली बनना होगा इधर, क्योंकि मार्ग में कांटे ही कांटे हैं। ऐसा नहीं कि वो संसार का मार्ग छोड़ दिया तो ये मार्ग में कांटे नहीं है। अग्निपथ, ब्रैकेट में सहज राजयोग, दो मार्ग है, एक है संसार का मार्ग, एक है अध्यात्म का मार्ग, एक है मनुष्य की मत, एक है श्रीमत। दोनों पर कांटे हैं, दोनों पर अंगार है, परंतु एक अंतर है, इधर भी अग्नि इधर भी अग्नि। संसार का जो मार्ग है, संसार की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, उस अग्नि में जलते 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 आत्मा एक दिन राख हो जाती है, कुछ नहीं बचता जीवन में, कुछ पाया ही नहीं। एक साइंटिस्ट लिखता है, माय लाइफ हैज बीन स्पेंट इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय लाइफ आई फाइंड लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माय फिंगर्स। वो लिखता है सारे जीवन भर प्रयोग करते रहा, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और अभी जीवन के अंत में जैसे जीवन मेरी उंगलियों से निकल गए, पता ही नहीं जीवन में क्या करना था। यह संसार का मार्ग है, ये जो मार्ग है अध्यात्म का, परमात्मा की ओर जाने वाला, इसमें भी जलना है, परंतु जलते 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 आत्मा कुंदन बन जाती है, सोना हीरा बन जाती है, एक हीरा समस्त विश्व को प्रकाशित कर सकती है। ये जलना, वो भी जलना, ये भी जलना, परंतु परिणाम में बहुत अंतर है। इसलिए और कोई बात गुड़िया से संबंधित? दो पॉइंट्स हो गए। देह के आकर्षण में नहीं आना है, ये सब क्या है? देह क्या है? ये बस मिट्टी का पुतला है। इस मिट्टी के पुतले में कौन सा सौंदर्य, कौन सा आकर्षण? कोई आकर्षण नहीं है, दुख देने वाला है, खेल है। और दूसरा बाबा ने कहा है, तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि देह क्या है? आत्मा निकल गई, देह को तो उसमें कुछ नहीं है, इससे तो न्यारे होना है। तो देखो ये सारा, इसे कहा जाता है चिंतन। एक वस्तु को देखा, एक चीज को देखा, उसको ज्ञान से जोड़ दिया, तो ये अलौकिक हो गया, फिर ये अलौकिक नहीं रहा। तो हम कहां थे? रचनात्मकता, और फिर है सेवा में रचनात्मकता। अभी सेवाओं की रचनात्मकता की हम चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कितने हो गए, 6-7। भोजन, शक्तिशाली बनने की एक विधि है भोजन। सभी को पता है भोजन क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम एक ही बात की चर्चा करेंगे, भोजन को किस तरह से खाया जाए, या फिर कहे कौन सी वो विधि है जिससे हम भोजन करें। उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, जैसे भारतीय सभ्यता में चौका कहते हैं चार चीजें, भोजन किस पैसे से आ रहा है, भोजन कौन बना रहा है, भोजन में कौन से दोष है, और चौथा भोजन जो खा रहा है किस मनस्थिति में खा रहा है, कौन सी मनोदशा में उसे स्वीकार किया जा रहा है। सबसे पहले अर्थ दोष, जो पैसा आ रहा है कैसी कमाई है, एक नंबर दो नंबर कैसी कमाई है, यदि वो गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, फिर चाहे हम उसका भोग भी लगा रहे हैं, दृष्टि भी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परंतु वो पैसा गलत तरीके से आ रहा है तो शक्ति नहीं बनेगा। आयुर्वेद में कहते हैं जो भोजन हम खाते तीन विभागों में शरीर में जाता है। सबसे निचला भाग मलमूत्र बनता है, दूसरा भाग शरीर बनता है, और तीसरा भोजन का जो भाग है जाकर मन बनता है। तो जो भोजन हम खा रहे हैं, जो मन बनने वाला है, जिसे हमें शक्तिशाली बनाना है, वो मन कितना शक्तिशाली होना चाहिए। अगर वो भोजन गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से आ रहा है, किसी का शोषण करके वो पैसा आ रहा है, तो क्या वो भोजन शक्तिशाली बनाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं बना सकता। इसके लिए जीवन में वो ईमानदारी का गुण होना चाहिए, पवित्र धन। हमारा जो भी धन हो वो कैसा हो, पवित्र धन हो, एक। दूसरा है निमित्त दोष, जो व्यक्ति भोजन बना रहा है किन संकल्पों से भोजन बना रहा है। अगर मन में क्रोध है तो वो क्रोध उसमें जाएगा, मन में लोभ है, मन में विकार है तो वो उसमें जाएगा, ईर्ष्या का भाव है तो वो उसमें जाएगा, आवेश है, एक्साइटमेंट है, इधर मैच भी देख रहे हैं, इधर भोजन भी बना रहे, एक आवेग की अवस्था है, इधर चिंता लगी है भारत जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, बीच में वो भी देख रहे, बीच में इधर आके भोजन भी बना रहे, आवेग की अवस्था है, उद्वेग की अवस्था है। क्या ऐसी स्थिति में बनाया हुआ भोजन पवित्र भोजन होगा? कभी नहीं। निमित्त दोष, जो व्यक्ति है उसके मन में कौन से भाव है, किस तरीके से भोजन बना रहा है, यहां तक कि भोजन बनाते समय एक एक जो चीज हम उसमें डाल रहे हैं उसको भी हमें सकाश देनी है, वाइब्रेशंस दे रही है। तेल डाल रहे हैं, देते देते तेल को सकाश, चीनी डाल रहे हैं, देते देते चीनी को सकाश, हर चीज को दृष्टि देते देते हम उसमें प्रयोग करें। और एक श्रेष्ठ भाव, ये भोजन हम किसके लिए बना रहे हैं, स्वयं उसके लिए बना रहे, किसी देहधारी के लिए नहीं, उनके लिए, उसके लिए बना रहे हैं। और फिर जो भी इस भोजन को खाएगा, पवित्रता की सूक्ष्म शक्ति उस आत्मा में भर जाएगी। इसके लिए यह बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। अगर किसी को ज्ञान में भी लाना है तो उसे इस तरह से परमात्मा प्रेम की, परमात्मा याद में बनाया हुआ भोजन यदि खिलाया जाए, तो बाबा ने कभी एक अव्यक्त संदेश है गुलजार दादी के द्वारा, बहुत पहले एक यह संदेश आया था जिसमें बाबा ने कहा कि यदि भोजन बाप की याद में बनाया जाए और स्वीकार किया जाए, आपको काम आएगी ये पॉइंट कहीं बाहर क्लास कराने के लिए, तो 50% प्यूरिटी, बाबा ने कहा, ऐसी ही अचीव हो जाएगी, 50% पवित्रता वैसे ही जीवन में आ जाएगी यदि भोजन को याद में बनाया जाए और स्वीकार कराया जाए, तो इतना उसका महत्व है। फिर होता है एक जाति दोष, वो जो भोजन है कितना स्वच्छ है, हमने धोया है या नहीं धोया है। कई लोगों की आदत होती है भोजन बना भी रहे साथ साथ खा भी रहे, खाते भी रहते हैं बीच बीच में और भोजन भी बनाते रहते हैं, क्या इसे भोग कहा जाएगा? ठाकुर के लिए भोग बनाते हैं भक्ति मार्ग में, कितना प्रेम से और कितना भावना से बनाते हैं भक्त। फिर उसके बाद है जो भोजन कर रहा है वो किस मनोदिशा दशा में कर रहा है। यदि भोजन करते समय ये संकल्प है कि ये ठीक नहीं है, इसमें नमक कम है, इसमें वो कम है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं है, कंप्लेन का भाव है, अरे मिल रहा है, संसार में जाकर देखो आत्माओं की क्या हालत है, खाने को रोटी नहीं है, हमें मिल तो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात भोग लगाना। गीता में लिखा है जो आत्मा मुझे भोजन अर्पण किए बिना खुद खाती है वो क्या है? चोर। इस सभा में माताओं की तरफ से कितनी ऐसी माताएं हैं जो रोज एक बार 24 घंटे में एक बार भोग लगाती है, बहुत सारी माताएं, और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो तीनों बारी लगाते तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पर कम से कम 24 घंटे में एक बार विधिवत। एक है भोजन की थाली सामने आ गई और हमने दृष्टि दी, वो दूसरा, परंतु विधिवत भोग लगाना। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, फिर से अलर्ट होके बैठना है, फिर से एक सूक्ष्म संकल्प। यहां पर भोजन तो है नहीं, परंतु क्योंकि पॉइंट भोजन की चल रही है तो हम एक संकल्प करें कि हमारे हाथ में जैसे भोजन की थाली है, जैसे भोग लगाते समय करते हैं वही प्रयोग अभी करेंगे, कि हमने भोजन बहुत प्रेम से बनाया है और वो थाली लेकर हम चले बाबा के पास, बाबा उस भोजन को दृष्टि दे रहे हैं, शक्तियां भर रहे हैं उस भोजन में, और बाबा को भोजन हम खिला रहे हैं और फिर नीचे ला रहे हैं। ये संकल्प करके अगले 3 मिनट में के लिए योग में बैठेंगे। इस सभा में कुमार कितने हैं? कम है। तो भोजन, उसके बाद में अभी नेक्स्ट एक दो पॉइंट और है, फिर इस क्लास को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है माफ करना और माफी मांगना। किसको माफ करेंगे? किसको माफ करेंगे? जिन्होंने हमें दुख दिया है, जिन्होंने हमें सताया है, जिन्होंने हमें अपशब्द कहे, जिन्होंने हमें सहयोग नहीं दिया, जिन्होंने हमारी ग्लानी की, जिन्होंने हमारी निंदा की, जिन्होंने हमारा विरोध किया, जिन्होंने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किए, करेंगे माफ उनको कि नहीं? कि हम भी सोच रहे हैं अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ, मौके की तलाश है, बस मौका आ जाए, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, हम भी करेंगे, हम बीमार थे ये देखने नहीं आया, पड़ो बीमार हम भी नहीं आएंगे। तो माफ करना है आत्माओं को। क्यों माफी देनी है आत्माओं को? हम हैं कौन? हम पूर्वज है, हम बड़े हैं, हम अग्रज है, एंसेस्टर है, हमने भगवान को जाना है, समझा है, और हमारा बाप कैसा है? रहमदिल है ना, करुणा का सागर है, क्षमा का सागर है, कोमलचित अतिदीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिनु कारण कृपा करने वाला वह रघुनाथ, ऐसा भक्ति में उसका गायन है, ओशन ऑफ मर्सी, ओशन ऑफ कंपैशन, अल रहमान अल रहीम, वह अल रहमान अल रहीम, उसकी हम संतान। क्या हम आत्माओं को माफ नहीं करेंगे कि सोच रहे हैं उनको कैसे दंडित करें? हमारे खिलाफ ऐसा किया, बड़ा काम है ये, सबको माफ कर देना। अपराधी के लिए सबसे बड़ी सजा है क्षमा, इससे बड़ा कोई दंड नहीं है, क्षमा कर देना अपराधी को। बहुत बड़ा हृदय चाहिए इसके लिए, बहुत बड़ा। कल बाबा ने दधीची ऋषि को याद किया था, कल या परसों? परसों दधीची ऋषि का अपमान किया था इंद्र ने, बहुत जबरदस्त अपमान। इसके लिए वो दिखाया है शास्त्र में, वृत्तासुर नाम का जब राक्षस तांडव कर रहा था, तब इंद्र को ब्रह्मा ने बताया कि केवल दधीची ऋषि की अस्थिया से यदि वज्र बनाया जाए तो ही इस वृत्तासुर का नाश हो सकता है। परंतु अभी इंद्र आए कैसे उसके पास? क्योंकि इंद्र ने तो भरी सभा में दधीची का अपमान किया था, बहुत बड़ा अपमान किया था दधीची का। परंतु दिखाया है जब इंद्र दधीची के आश्रम में आता है, दधीची उसका स्वागत करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। किसको सम्मान दे रहे हैं? उस व्यक्ति को जिसने उनकी इंसल्ट की थी, वो दूसरी बात है, बाद में उन्होंने अपनी अस्थियां भी दे दी। जबकि इस बार वो व्यक्ति आ रहा है क्षमा मांगने नहीं आ रहा है, अपने स्वार्थ के कारण आ रहा है। पहले तो अपमान किया था, पर अभी आ भी रहा है, किस लिए आ रहा है? स्वार्थ के कारण आ रहा है। सुरन रमुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। इस संसार में सभी स्वार्थी है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। स्वार्थ के लिए प्रीत करते हैं संसार के लोग, ऐसे स्वार्थी ऐसे शूद्र लोग इस संसार में है। यदि हमारा भी उनके प्रति एटीट्यूड वैसा ही हो तो हम में और उनमें भेद क्या? महाभारत में दिखाया है कर्ण का जब निर्णायक युद्ध होता है अर्जुन से, उसके गुरु उसके स्वप्न में आके उसको कहते हैं कि कर्ण तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, दे दो विजय, तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, चाहे तो तुम विजयी बन सकते हो, परंतु तुम्हारा जन्म दानवीर कर्ण के रूप में है, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, दे दो, तुम महान हो, बाबा ने कहा है तुम महान आत्माएं हो, तुम रहमदिल आत्माएं हो, संसार की आत्माएं परवश है, दुखी है, जो कार्य कर रही है उन्हें ही नहीं पता क्या कर रही है, उनके विकर्म ही हो रहे हैं। तो हमारा कितना बड़ा हृदय होना चाहिए, हमारे शब्द कितने ऊंचे होने चाहिए, किसी को दुखाने वाले नहीं, अपमानित करने वाले नहीं, क्रोध से भरे हुए नहीं। रामायण में बार बार दिखाया है, बार बार लक्ष्मण को क्रोध आता है, हर जगह पर लक्ष्मण को क्रोध आते हुए दिखाया है। जल सम वचन बोले रघुनाथा, परंतु राम के वचन कैसे है, जल सम वचन बोले रघुनाथा, शीतल उसके वचन है, हमारे बोल भी वैसे हो। तो आत्माओं को क्या करेंगे आज, कल सुबह अमृत वेले हम जो यहां, अगर आप सब आएंगे तो यहां ड्रिल कराएंगे आत्माओं को माफ करने की। दूसरी चीज है आत्माओं से माफी मांगना। किस किस से माफी मांगेंगे, जिनको हमने दुख दिया है, जिनके विरुद्ध हमने षड्यंत्र किए हैं, जिनको हमने अपशब्द व्यंग बान छोड़े हैं, इंसल्ट की है, असहयोग दिया है, उनकी बात नहीं मानी, उनको डिसरिगार्ड डिसरिस्पेक्ट किया है, उन सभी से क्षमा। हो सकता है इस यज्ञ में हमारी वजह से कोई ज्ञान छोड़कर चला गया, हम निमित्त बने थे, हमारी किसी चलन को देखकर उसको लगा कि देखो ये ऐसा करते हैं, हमें तो शायद पता भी नहीं हो कि हमारी इस चलन की वजह से वो छोड़कर चला गया। ऐसी आत्माओं को भी माफी मांगना। और किससे माफी मांगेंगे, किससे माफी मांगेंगे, किससे, जिसको बहुत बार बार टॉर्चर किया अज्ञान काल में हमने जो कुछ किया सब विकर्म ही था, माफी मांगना, माफ करना, ये दो कार्य करने हैं। और लास्ट पॉइंट, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है, अथाह है, परंतु समय को देखते हुए यहीं पर उसको समाप्त करते हैं। अपने अंदर जो भय है, फोबियाज, फियर, अननोन फियर, अज्ञात भय, इतने सारे भय हमारे अंदर है, बहुत सारी चीजों का डर है, अगर ये हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, इन भयों से मुक्ति। जब तक ये भय, अननोन फोबियाज, अननोन फियर हमारे अंदर है, अपरिचित से भय, कुछ परिचित कुछ अपरिचित, तब तक हम शक्तिशाली नहीं बन सकते, इन भय से हमको जीतना होगा। जैसे दिखाया है एक काली छाया जाती है, एक साधु बैठा है गांव के बाहर, वो सन्यासी पूछता है ए छाया तुम कहां जा रही हो, वो कहती है मैं मौत हूं, इस गांव में जा रही हूं। वो कहता है किस लिए, वो कहती है 500 को उठाने का आदेश आया है, गांव में 500 लोगों को मारने का आदेश आया है। वो छाया कहती है काली छाया, मौत की छाया, प्लेग। एक मास के बाद वो वहां से गुजरती रहती है बाहर, तो साधु कहता है ए रुको, तुमने कहा था 500 को मारूंगी, गांव में तो 1000 लोग मरे हैं। वो कहती है कि मैंने तो मारा 500 को ही, बाकी सब डर से मर गए। ये डर ऐसी चीज है। आज रात को सोने से पहले एक छोटी सी लिस्ट बनानी है, 5 बातें जिसकी मुझे बहुत भय है। कौन सी चीजें हैं जीवन में, निंदा का भय है, किसी के मृत्यु का भय है, बीमारी का भय है, बीमारी ना हो जाए, बेटे को कुछ ना हो जाए, कौन से भय है और उनका कारण क्या है, क्योंकि हमें निर्भय बनना है। यदि हमारे मन में भय है तो हम वापस नहीं जा सकते, भय से ग्रसित व्यक्ति बहुत कमजोर होता है, जो निर्भय है, निडर है, दबंग है, वही शक्तिशाली है। फियरलेस, इंट्रिपिड, ऐसी जो आत्माएं हैं वही शक्तिशाली हो सकती है, जिनके हृदय में बहुत सारे भय है, अज्ञात से भय, चोरी का भय, इसका भय, अंधेरे का भय, कॉकरोच का भय। कुछ दिन पहले मुरली में भी आया था ना, कॉकरोच से डरते हैं, चींटी से डर जाते, वो मरी हुई चींटी है, बाबा कहते पेपर टाइगर, जिंदा नहीं है। जैसे एक कहानी है जिसमें दिखाया एक महिला है जिसको रोज रात में एक स्वप्न आता है, एक काली छाया राक्षस जैसी उसका पीछा कर रही है, पीछा कर रही है, वो भाग रही है अकेले, रोज रोज एक ही स्वप्न। जैसे उठती है तो धड़कन बड़ी हुई, पूरा पसीने से लथपथ, रोज एक ही स्वप्न, इतना भयभीत होती है। कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज नहीं हुआ। एक दिन फिर से सोती है और फिर से वही स्वप्न, अंधेरी रात, जंगल घना, और वो भाग रही है, भाग रही है, और पीछे एक परछाई राक्षस की तरह काली छाया। और पर इस बार ऐसा होता है कि हर बार उसे दिखता नहीं है वो कौन है, इस बार वो नीचे गिरती है और वो काली छाया उसके ऊपर आ जाती है। तो वो पूछती है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? उस राक्षस से पूछती है वो काली छाया, कहते हैं मुझे क्या पता, स्वप्न तुम्हारा है। हमारे ही भय, अज्ञात से भय, एक बाहर के रूप धारण करते हैं और हमें ही डराते हैं, जीवन भर डराते रहते हैं, है कुछ भी नहीं, बाबा कहते पेपर टाइगर है, कागज का शेर, परंतु डराते बहुत है। सभी डर से मुक्त होना, स्वयं को मुक्त करना, पहले तो जानना होगा कौन से डर है, ये मेरे डर है, इन ये चीजें हैं जो मुझे डराती है, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। डर से मुक्त होने की एक विधि, उसको कहा जाता है प्रतिपेक्ष भावना। प्रतिपेक्ष भावना मतलब अपोजिट थॉट वेव क्रिएट करना, जिससे डर है उसके विरोध में विचार करना, कॉन्ट्ररी थॉट्स। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जो बहुत दारू पीता है और दारू पीने के बाद वो कहता है मुझे चारों ओर सांप ही सांप नजर आते हैं। कई लोगों ने उसे समझाया वो सांप झूठे हैं, वो कहता है मुझे पता है वो झूठे हैं, परंतु जब मैं पी लेता हूं तब मेरे लिए वो सत्य होते हैं और मुझे बहुत डर लगता है उन सांपों से। जैसे ही पीता हूं, और पीना तो छूटता नहीं है, पीता जैसा हूं सांप ही सांप चारों ओर सांप ही सांप, मैं भयभीत होता हूं। एक दिन वो व्यक्ति अपने हाथ में एक पिंजरा लेके घूमते रहता है और बिल्कुल निडर घूमते रहता है, पिया हुआ है परंतु निडर, हमेशा किसी तरह डरा हुआ नहीं है। तो लोग उसे पूछते हैं ये पिंजरे में क्या है, वो कहता है नेवला। नेवला किस लिए? क्योंकि सांप ही सांप है। लोग उसको समझाते अरे वो सांप झूठे है, वो कहता है ये नेवला भी झूठा है। एक भय को समाप्त करने के लिए, एक इमेजिनेशन को खत्म करने के लिए नए इमेजिनेशन का निर्माण किया गया, इसे कहा जाता है रेजिंग ऑफ कॉन्ट्ररी थॉट्स। जिसकी हमें भय लगता है, जिससे हमें भय लगता है उसका सामना करना, या फिर नया इमेजिनेशन उसके विरोध में विचार करना, ये एक विधि है। बहुत सारी विधियां हैं परंतु ये एक विधि है उस भय से मुक्त होने की। तो बाबा अभी आ रहे हैं 15 तारीख को, बाबा क्या चाहते हैं, हम शक्तिशाली बने। होमवर्क दिया था बाबा ने, अब तक अगर किया नहीं है तो 2-3 दिन बाकी है, उसमें ऐसी सशक्त आत्मा बनकर हमें बाबा के सामने बैठना है। अच्छा, ओम शांति। सभी 2 मिनट के लिए बैठेंगे फिर जाएंगे।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।